दिन भर 21 मई दिन रविवार स्वीकार करें संदीप सोनी का नमस्कार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब की यात्रा पर रियाद में इस्लाम पर देंगे भाषण, लेकिन इस्लाम और मुसलमानों को कोसने वाले ट्रंप ने अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए सऊदी अरब को ही क्यों चुना?
मुझे लगता है कि बैक चैनल्स के बेसिस पे इन्होंने ये प्लान किया था कि फॉरेन पॉलिसी में जो सबसे बड़ी विक्ट्री होगी शुरू में वो सऊदी अरेबिया के विजिट के साथ होगी।
दिल्ली के जंतर मंतर पर भीम आर्मी का प्रदर्शन और संग संग गुनगुनाओगे में आज चर्चा संगीतकार जयदेव की।
अभी न जाऊं छोड़ कर।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार निखिल रंजन से। पहले विदेश दौरे में सऊदी अरब आए अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस्लाम पर अपने भाषण में कूटनीतिक संतुलन रखने के साथ ही सऊदी अरब को एक कड़ी चेतावनी भी देंगे, ऐसी उम्मीद की जा रही है। उनके भाषण के कुछ हिस्सों को पहले ही जारी किया गया है। माना जा रहा है कि राष्ट्रपति कहने वाले हैं कि जब भी कोई आतंकवादी किसी मासूम व्यक्ति की हत्या करता है और गलत तरीके से ईश्वर का नाम लेता है तो उस धर्म में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति का अपमान करता है। डोनाल्ड ट्रंप मध्य पूर्व के देशों से ये भी कहने वाले हैं कि इलाके में चरमपंथ को खत्म करने के लिए हर बार अमरीका दखल नहीं देगा। उत्तर कोरिया की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण करने की बात सामने आई है। दक्षिण कोरिया के सेना अध्यक्ष ने एक बयान जारी कर बताया है कि पश्चिमी तट की ओर पुकचांग के नज़दीक से कोई चीज़ को हवा में उड़ते देखा गया है। कहा जा रहा है कि करीब 500 किलोमीटर की उड़ान भरने के बाद मिसाइल जापान सागर में गिरा। जापान के कैबिनेट मंत्री योशीहिदे सुगा ने मिसाइल लॉन्च का कड़ा विरोध किया है। सुगा का कहना है कि ये मिसाइल जापान के विशेष इकोनॉमिक जोन के बाहर गिरा। दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता चो जून ह्यूक ने इस परीक्षण की निंदा की है। उन्होंने कहा, उत्तर कोरिया ने आज फिर बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। उत्तर कोरिया की बार बार उकसावे की कार्रवाई हमारी सरकार और अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी की शांति स्थापित करने और कोरियाई प्रायद्वीप को परमाणु हथियारों से मुक्त बनाने की इच्छा और उम्मीदों के खिलाफ है। सरकार इस गैर जिम्मेदाराना हरकत की कड़ी निंदा करती है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन ने इस परीक्षण पर प्रतिक्रिया के लिए आपातकालीन बैठक बुलाई है। दक्षिण कोरिया की सरकार ने नई कैबिनेट के मंत्रियों के नाम का ऐलान किया। इसके कुछ ही देर बाद मिसाइल का परीक्षण हुआ। दिल्ली में जंतर मंतर पर आज हजारों की तादाद में भीम सेना के बैनर तले लोग जमा हुए। ये लोग सहारनपुर की घटना पर अपना विरोध जताने आए थे। इन लोगों का कहना है कि पीड़ित होने के बावजूद सरकार ने ना तो उन्हें मुआवजा दिया ना ही उनका दुख दर्द सुना। दो समुदायों के बीच हुई झड़प के बाद दलितों के 50 घर जला दिए गए। इसमें अगड़ी जाति के एक व्यक्ति की मौत भी हुई। पुलिस ने दोनों पक्षों से दर्जनों लोगों को गिरफ्तार किया है। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। ईरान में सुधारवादियों ने शुक्रवार को तेहरान नगर परिषद के चुनाव में सभी 21 सीटों पर जीत हासिल की है। पिछले 14 सालों में रूढ़िवादियों की ये पहली हार है। ये नतीजे सुधारवादी राष्ट्रपति हसन रूहानी के जीत के तुरंत बाद आए हैं। शुक्रवार को ही हुए चुनाव में दूसरे कार्यकाल के लिए रूहानी ने बहुमत हासिल किया। नए नगर परिषद की बैठक के 45 दिनों के भीतर बुलाई जाएगी, जिसमें मेयर का चुनाव होगा। ये परिषद करीब 90 लाख तेहरान वासियों की सुख सुविधाओं का ख्याल रखती है। तुर्की के राष्ट्रपति रिचप तैयब एर्दोवान का अंकारा में एके पार्टी की कार्यसमिति के विशेष सम्मेलन में हजारों समर्थकों ने स्वागत किया। एर्दोवान एक बार फिर पार्टी का नेतृत्व अपने हाथ में लेने जा रहे हैं। 2014 में राष्ट्रपति चुने जाने के बाद उन्होंने पार्टी प्रमुख पद से इस्तीफा दे दिया था। संवैधानिक बदलावों के लिए रायशुमारी में बहुत कम वोटों से बहुमत मिलने के बाद एर्दोवान को फिर से किसी पार्टी से जुड़ने की इजाज़त मिली है। पार्टी प्रमुख के लिए वो अकेले उम्मीदवार हैं और वो मौजूदा प्रमुख बिनाली यिल्दिरिम की जगह लेंगे, जो देश के प्रधानमंत्री भी हैं। कांग्रेस हॉल के बाहर समर्थकों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि वो पार्टी में लौटकर बेहद खुश हैं। मेरे प्रिय क्रामरेडो, मैं 998 दिनों की गैर मौजूदगी के बाद पूरे दिल से तुम्हें सलाम करता हूं। हम एक दूसरे से दूर थे, लेकिन फिर अब एक साथ हैं। मेरे प्रिय कामरेड, आप जितना ही उत्साह मेरा भी है। ये एक लंबा सफ़र है, हमने दिन रात चलते रहे हैं और चलते रहेंगे। ये थे राष्ट्रपति एर्दोवान के शब्द। और बहरीन की एक अदालत ने देश के सबसे प्रमुख शिया धर्म गुरु ईसा कासिम को 1 साल के निलंबित जेल की सजा सुनाई है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की दूसरी सभा दिन भर सुन रहे हैं आप संदीप सोनी के साथ रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर और अपने मोबाइल फोन पर भी दिन भर का सीधा प्रसारण। कार्यक्रम की शुरुआत उस अंतर्राष्ट्रीय खबर से जिस पर इस समय दुनिया भर के मीडिया की नजरें लगी हुई हैं। अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप सऊदी अरब का दौरा कर रहे हैं। दौरे का आज दूसरा दिन है। ट्रंप इस समय रियाद में मौजूद हैं और वो अब से कुछ ही देर में दुनिया भर के मुस्लिम देशों के नेताओं को संबोधित करने वाले हैं जो ट्रंप को सुनने के लिए रियाद में जुटे हैं। ये वही डोनाल्ड ट्रंप हैं जो राष्ट्रपति बनने से पहले चुनाव प्रचार के दौरान इस्लाम और मुसलमानों को जमकर कोसते थे। तब और अब क्या कुछ समीकरण बदल गए हैं? ट्रंप इस दौरे से क्या हासिल करना चाहते हैं और मुस्लिम देशों के नेता ट्रंप के इस बदले रुख को कैसे देख रहे हैं? यही समझने के लिए मैंने अब से कुछ देर पहले अमेरिका फोन लगाया और डेलावेयर यूनिवर्सिटी में अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार प्रोफेसर मुख्तदर खान से बात की और पहला सवाल यही पूछा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी विदेश यात्रा के लिए सबसे पहले सऊदी अरब को ही क्यों चुना?
ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी कि उन्होंने सऊदी अरेबिया को चुना, लेकिन सऊदी अरेबिया के साथ मुझे लगता है कि शुरू से डायलॉग शुरू हो गया था। ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के चंद हफ्ते के बाद ही सऊदी अरेबिया के जो डिफेंस मिनिस्टर है उनको CIA की तरफ से एक अवार्ड भी दिया गया टेररिज्म के खिलाफ। तो मुझे लगता है कि बैक चैनल्स के बेसिस पे इन्होंने ये प्लान किया था कि फॉरेन पॉलिसी में जो सबसे बड़ी विक्ट्री होगी शुरू में वो सऊदी अरेबिया के विजिट के साथ होगी और आप उसका नतीजा देख रहे हैं। $110 बिलियन की डील अनाउंस की है इन्होंने वेपन्स, और उसके बेसिस पे ट्रंप ये कह सकते हैं अपने फॉलोअर्स कि मैं अमेरिका में नए जॉब्स क्रिएट कर रहा हूँ, नया बिजनेस लेकर आ रहा हूँ और आई एम द बेस्ट डील मेकर।
आपको ध्यान होगा डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के बाद मुस्लिम बहुल 7 देशों के नागरिकों के अमरीका आने पर पाबंदी लगा दी थी। ज्यादा पुरानी बात नहीं है। तब और अब समीकरण कुछ बदल गए हैं क्या?
नहीं, वो बदले नहीं है। वो बेसिकली वो समझते हैं कि जो वो बातें अपनी कंस्टिट्यूएंसी के लिए कर रहे हैं और प्रॉमिसेस जो उन्होंने इलेक्शन के दौरान किए थे वो फुलफिल करने की उन्होंने कोशिश की थ्रू एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स, और वो मुस्लिम बैन जो ऑर्डर है अभी भी वो कोर्ट्स में फंसा हुआ है। और दिलचस्पी की ये बात है कि जो उनका एडवाइजर है स्टीफन मिलर, जिसने वो बैंस को एक्चुअली लिखा है, वो ही शख्स इस्लाम की स्पीच लिख रहा है डोनाल्ड ट्रंप के लिए।
आपको क्या लगता है प्रोफेसर साहब, अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब के इस दौरे से और इन तमाम डील्स से क्या हासिल करना चाहते हैं?
मुझे तो ऐसा लगता है कि सऊदी अरेबिया और दूसरे इस्लामिक मुमालिक जो एक्सपेक्टेशंस बनाए रखे हैं ट्रंप से कि वो बिल्कुल ओबामा से मुख्तलिफ फॉरेन पॉलिसी अपनाएंगे, उनके लिए डिसअपॉइंटमेंट जरूर होगा। लेकिन जितना भी फाइनेंशियल फायदा ट्रंप उठा सकते हैं अमेरिका के लिए वो शायद वो रियलाइज कर लेंगे। दूसरी चीज ये है, ट्रंप ने जो फॉरेन पॉलिसी स्टेटमेंट्स अपने कैंपेन में किए हैं कई प्रॉमिसेस वगैरह उन्होंने रिवर्स कर लिए। मिसाल के तौर पे चाइना के बारे में जिन्होंने उन्होंने जितनी एंटी चाइना रेटरिक कैंपेन में इस्तेमाल की इलेक्शन के बाद से वो सारा रिवर्स हो गया, वापस वन चाइना पॉलिसी पर आ गए हैं और चाइना के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश। उन्होंने प्रॉमिस किया था कि नाफ्टा को वो कैंसिल कर देंगे, अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो इस तरह से इस फॉरेन पॉलिसी पर उतने प्रॉमिसेस नहीं रख रहे हैं ट्रंप।
आपको क्या लगता है कि जो तमाम मुस्लिम देशों के नेता हैं जो इस सम्मेलन में शिरकत कर रहे हैं वो अमेरिकी राष्ट्रपति के बदले हुए रुख को किस तरह देख रहे होंगे?
जो पब्लिक हैं मुस्लिम कंट्रीज की उनके लिए कुछ असर नहीं होगा। वो समझ गए हैं कि ट्रंप फंडामेंटली एंटी मुस्लिम है और उन्होंने एंटी मुस्लिम लीडर्स, उनकी कैबिनेट में भी कई लोग ऐसे हैं जिस तरह के स्टीव बैनन वगैरह जो बहुत ही एंटी मुस्लिम है और उनकी लीडरशिप, तो पब्लिक में ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। लेकिन जो लीडर्स हैं उनकी जो स्पेसिफिक नेशनल इंटरेस्ट हैं और स्पेसिफिक जरूरतें हैं अगर वो पूरी होंगी तो वो ट्रंप के साथ कोऑपरेट करेंगे।
ये थे डेलावेयर यूनिवर्सिटी में अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार प्रोफेसर मुख्तदर खान, जो सऊदी अरब में जो अब से कुछ देर के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप संबोधित करने वाले हैं दुनिया भर के मुस्लिम देशों के नेताओं को। उसके आगे पीछे और मौजूदा सूरत हाल के बारे में बता रहे थे। और आइए अब लौटते हैं दिल्ली। दिल्ली के जंतर मंतर पर आज दलितों ने बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में राजपूतों और दलितों के बीच हिंसक घटनाओं के बाद चर्चा में आई भीम आर्मी ने इस विरोध प्रदर्शन की अगुवाई की। भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आज़ाद भी इसमें शामिल हुए, जिन पर कई मुकदमे दर्ज हैं। बीबीसी संवाददाता संदीप राय की रिपोर्ट।
दिल्ली का जंतर मंतर आज फिर नारों से गूंज रहा है। हर बार प्रदर्शनों के अलग अलग रंगों का गवाह बनता रहा है जंतर मंतर का ये धरना स्थल, मगर आज यहाँ का रंग नीला है। सहारनपुर में जातीय संघर्ष के बाद चर्चा में आई भीम आर्मी ने रविवार को प्रदर्शन किया, जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली के आसपास के इलाकों से बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। प्रदर्शनकारी शब्बीरपुर में दलितों के घरों में आगजनी की घटना को लेकर इंसाफ की मांग कर रहे थे।
ये बड़े आदमी ठाकुर है, ये कुछ नहीं समझते छोटी बिरादरी को, पता नहीं क्या समझाए अपना आपको, कहले हमारे से कोई बड़ा नहीं है, कुछ नहीं है। जो शब्बीरपुर है, ये शब्बीरपुर हमारे से थोड़ी सी दूर गाँव पड़ा है। उनकी बहन को, माँ को, भाइयों को, बड़ों को पहले पुलिस प्रशासन पे भी पूरा अधिकार उन्होंने इस तरह किया, मतलब कि पुलिस प्रशासन पे भी के कुछ हद नहीं है। जो इनका ये ठाकुर का एक यादव मर गया था तो उसको तो पैसा भी दे दिया, 15 लाख दे दिया, और जो ये हिंदू बिरादरी के चमार के मरे है उनके लिए कुछ भी नहीं है।
दरअसल इस प्रदर्शन का आह्वान भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद ने किया था, जिन पर पुलिस ने हिंसक वारदातों से संबंधित कम से कम 16 मामले दर्ज किए हैं। पुलिस की डायरी में चंद्रशेखर आजाद फरार हैं, फिर भी पुलिस को चुनौती देते हुए उन्होंने जंतर मंतर पर हो रहे प्रदर्शन को संबोधित भी किया। इस प्रदर्शन के दौरान गुजरात के ऊना में दलितों के साथ हुई मारपीट की घटना के बाद सुर्खियों में आए जिग्नेश मेवानी और जेएनयू के छात्र नेता उमर खालिद भी मंच पर मौजूद थे। चंद्रशेखर ने मंच से खुद के सरेंडर किए जाने के फैसले की घोषणा भी कर दी थी और अपनी भावी टीम की घोषणा भी की, लेकिन उन्होंने सरेंडर नहीं किया। संदीप राय, बीबीसी दिल्ली।
आज का दिन कैसा लग रहा है? अच्छे दिन, वाह।
मोदी सरकार के 3 साल, कौन कितना खुशहाल, कौन कितना बेहाल।
युवक के भविष्य के हिसाब से देखा जाए तो कहीं भी इनका खरा नहीं उतरा है, किसी भी सेक्टर में, चाहे एकेडमिक सेक्टर हो, चाहे आपका आईटी सेक्टर हो।
अच्छे दिन लाने के इरादे और विकास के वादे।
एक चीज है, उन्होंने पीएमओ में एक डिसाइसिवनेस लाया है। पिछले 8-10 साल में ऐसा मालूम होता था कि वहाँ में कोई आदमी ही नहीं है, ऑटो पायलट पे चल रहा है गाड़ी।
कुछ लोगों को जो देशवासी बाहर हैं उनको इकट्ठा करके जय जयकार के नारे लगा लेने से कोई रिलेशन बनता नहीं है। आपने अमेरिका से संबंध बनाने की कोशिश की, आपका रशिया से संबंध खराब हो गया।
आंकड़ों और तथ्यों की रोशनी में कैसे दिखते हैं दावे?
ये नहीं कह सकते कि जो जीडीपी ग्रोथ तो घटी है, इसके लिए मोदी जिम्मेदार है, पुरानी परिस्थिति थी वो भी आगे आई है।
पड़ताल करती विशेष रिपोर्टें, विश्लेषण और पूरी जानकारी बीबीसी हिंदी रेडियो और bbchindi.com पर 22 मई से।
दिन भर सुन रहे हैं आप संदीप सोनी के साथ। कार्यक्रम में आगे आईपीएल के फाइनल मुकाबले पर चर्चा, लेकिन पहले साप्ताहिक कार्यक्रम संग संग गुनगुनाओगे में आज बात संगीतकार जयदेव की संगीत समीक्षक यतीन्द्र मिश्र के साथ।
संग संग गुनगुनाओगे, कला समीक्षक यतीन्द्र मिश्र के साथ।
अभी न जाओ छोड़ कर के, दिल अभी भरा नहीं। अभी न जाओ छोड़ कर के, दिल अभी भरा नहीं।
आज हम जिस संगीतकार पर बात कर रहे हैं, वे फिल्मी संगीत की दुनिया में एक अलग ही मुकाम रखते आए हैं। जैसा कि आपने उनके सिग्नेचर ट्यून से समझ लिया होगा कि हम आज जयदेव पर बात कर रहे हैं। जयदेव, जिनके लिए कहा जाता है कि कि वे ऐसे अकेले गुणी संगीतकार हुए हैं जिन्होंने अपनी शर्तों पर फिल्म इंडस्ट्री में काम किया है। वे दिग्गज संगीत निर्देशक सचिन देव बर्मन के वर्षों तक सहायक रहे हैं और उन्होंने मशहूर सरोद वादक उस्ताद अली अकबर खान से संगीत की शिक्षा भी ली थी। और जब अली अकबर खान ने नवकेतन बैनर की दो फिल्मों आंधियां और हमसफर के लिए संगीत दिया तो उसमें जयदेव बतौर सहायक काम कर रहे थे। ये कम लोग जानते होंगे कि जयदेव बड़े संगीत अधिवेशनों में बराबर शिरकत किया करते थे। उन्होंने हरवल्लभ संगीत सम्मेलन के माध्यम से शास्त्रीय संगीत को इतने करीब से देखा और सुना था, या ये कहा जा सकता है कि वे इस संगीत समारोह को सुनते हुए ही जवान हुए थे। उनकी रगों में जैसे शास्त्रीय रागों की अनगिनत स्नेहिल छायाएं जवानी के दिनों से ही अपना असर डालने लगी थी। और बचपन में जिस संगीत विद्यालय में उन्होंने पहली बार सरगम सीखना आरम्भ किया वो पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर द्वारा स्थापित विद्यालय था। इसी के साथ ये देखना महत्वपूर्ण बन जाता है कि जयदेव ने 1943 में पंडित उदयशंकर का साथ पाया था, वो भी अल्मोड़ा में जाकर। और ये वही उदयशंकर हैं जिन्होंने विदेश की धरती पर जाकर तिमिर बरन और उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब के साथ मिलकर अपनी नृत्य नाटिकाओं का परचम फहरा रखा था। उदयशंकर से मिले हुए प्रभाव को हम जयदेव के कुछ गीतों की धुनों में उतरता हुआ देख सकते हैं, जैसे कि इस धुन को इसी अंदाज में सुनना चाहिए। ये कहा जा सकता है कि जयदेव ने बनी बनाई संगीत दुनिया की लीक से परे हटकर और थोड़ी दूरी बरतते हुए अपना संगीत सिरजा है। और ऐसे तमाम गीतों को सुना जा सकता है जो जयदेव का अपना स्टाइल बयां करती हैं।
देख ली तेरी खुदाई बस मेरा दिल भर गया, देख ली तेरी खुदाई।
जयदेव के लिए ये कहा जा सकता है कि वे अकेले ऐसे संगीतकार रहे हैं जिनके पहले और बाद में दोनों ही पायदानों पर कोई दूसरा संगीतकार उनकी तरह का मौजूद नहीं है। एक हद तक हम ये कह सकते हैं कि उनकी परंपरा में उनकी प्रतिस्पर्धा किसी दूसरे संगीतकार से नहीं थी बल्कि खुद से थी। जिस सांचे को बनाया उसे ही तोड़ दिया। जैसे जब हम दोनों का गीत सुनते हैं तो उसके ठीक बाद किनारे किनारे तक आते हुए या दो बूंद पानी और मान जाइए जैसी फिल्मों में जयदेव को एक बिल्कुल दूसरे ही मुकाम पर खड़ा पाते हैं।
पीतल की मेरी गागरी दिलड़ी से मोल मंगाई रे, पीतल की मेरी भरन हम जाए।
जयदेव के संगीत में एक मजेदार बात ये देखने को मिलती है कि उन्होंने प्रचलित पार्श्व गायकों मसलन लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी, आशा भोसले, गीता दत्त और किशोर कुमार जैसे सदाबहार आवाजों से अलग कई बार बिल्कुल नई गायिकाओं और गायकों को भी जगह दी। उनकी तमाम ऐसी फिल्मों के अत्यंत सुरीले और कर्णप्रिय गीतों को याद किया जा सकता है जिसमें बिल्कुल नए तरीके से कुछ पार्श्व गायक और गायिकाएं उभरे हैं। इनमें आसानी से स्मरण में रह आए गीत हैं रात पिया के संग जागी रे सखी, मीनू पुरुषोत्तम प्रेम पर्वत में, पीतल की मोरी गागरी परवीन सुल्ताना और मीनू पुरुषोत्तम दो बूंद पानी में, आजा सवरिया तो है गरवा लगा लूं हीरा देवी मिश्रा दमन में, और मैं तो कब से तेरे शरण में हूँ नीलम सहानी और हरिहरन रामनगरी जैसी फिल्मों में। फिल्मी गीतों के आस्वाद को समझने के साथ साथ हमें ये भी देखना चाहिए कि जयदेव की शास्त्रीयता का कलात्मक विस्तार उन गैर फिल्मी गीतों और पदों के माध्यम से भी संभव हो सका है जो हिंदी भाषी समाज को उनकी महान देन के रूप में मिल सके हैं। जयदेव अकेले ऐसे बिरले संगीतकार थे जिन्होंने हिंदी साहित्य के कई महान रचनाकारों विशेषकर जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, हरिवंश राय बच्चन, रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा की रचनाओं को संगीतबद्ध किया। मधुशाला का यह संगीत सुनना चाहिए जिसे जयदेव ने अपने सुंदर संगीत से नवाजा है और मन्ना डे की आवाज में उसे एक अलग ही मुकाम मिल सका है।
सुन कल कल छल छल मधुघट से गिरती प्यालो में हाला, सुन कल कल छल छल कल कल छल छल मधुघट से गिरती प्यालो में हाला।
इसी के साथ जयशंकर प्रसाद का ये गीत आशा भोसले की आवाज में सुनना चाहिए जिसे जयदेव ने अपने संगीत से अमर बना दिया है।
तुमुल कोलाहल कले में मेरे दे की बात रे मन, तुमुल कोलाहल कले में मेरे दे की बात रे मन।
जैसे हर संगीतकार की एक अमर रचना होती है जो उसके नाम का कीर्ति स्तंभ बनती है, जयदेव के लिए हम दोनों का वह प्रार्थना गीत अल्लाह तेरो नाम ईश्वर तेरो नाम है। ये गीत एक तरह से भारत की सामासिक संस्कृति और उसके भीतर रची बसी ढेरों धार्मिक मान्यताओं की खुली आवाजाही का ऐसा प्रतीकात्मक प्रार्थना गीत है जिसकी श्रेष्ठता आज 50 बरस बाद भी कम नहीं हुई है। इस गीत को सुनते हुए जो सबसे पहला विचार मन में आता है वह इस बात से ताल्लुक रखता है कि भारत के स्वाधीनता संग्राम के दौर से लेकर आज़ादी के तुरंत बाद तक होने वाली गांधी जी की प्रार्थना सभाओं में हर शाम जो सर्वधर्म कीर्तन होता था उसका स्वरूप कैसा रहा होगा। क्या वहाँ जयदेव की इस कृति की अनुगूंजें छूट गई थी जो गांधी जी की मृत्यु के बाद इस तरह से हम दोनों के गीत में अपना स्वरूप विकसित कर रही थी। एक हद तक ये कहा जा सकता है कि जयदेव का संगीतकार एक निर्लिप्त दार्शनिकता के सहारे अपने संगीत को रचता है, एक ऐसी मार्मिकता जिसमें संगीत की धुनें अपने आप एक अपना दर्शन बना लेती हैं। जयदेव के संगीत में आपको दादरा ताल मिलेगा, उसमें सितार, क्लैरोनेट, बांसुरी, शहनाई और तबला की अनूठी जुगलबंदी दिखाई देगी और शायरी और कविता के प्रति महीन संवेदनशीलता देखने को मिलेगी जो उन्हें एक बड़े पाये का संगीतकार बनाती है। हम जयदेव की संगीत पटल से जो कुछ फिल्मों को चुनकर याद कर सकते हैं उनमें तमाम ऐसे शाहकार धुनें मौजूद हैं जो उन्हें एक महान संगीतकार का दर्जा देती हैं। फिर वह आलाप का माता सरस्वती शारदा जैसा सुंदर प्रार्थना गीत हो या तुम्हारे लिए का बोले राधा श्याम दीवानी जैसा भजन, हर जगह जयदेव अपनी ऊंचाई में मुकम्मल आए हैं। चलते चलते हम उनका एक सुंदर पद सुनते हैं जो उन्होंने अनकही फिल्म में पंडित भीमसेन जोशी से गवाया था, और इस बात को समझने का जतन करते हैं कि कैसे फिल्म संगीत की पॉपुलैरिटी के साथ जयदेव ने शास्त्रीयता का दामन बराबर से थाम रखा था।
रघुवर तुमको मेरी लाज, सदा सदा मैं चरण तिहारी, सदा सदा मैं चरण तिहारी, तुम हो गरीब निवाज, रघुवर तुम हो गरीब निवाज।
संगीतकार जयदेव पर आधारित संग संग गुनगुनाओगे सुन रहे थे आप यतीन्द्र मिश्र के साथ, और अब खेल समाचार। आदेश कुमार गुप्त स्टूडियो में आ चुके हैं। आईपीएल का फाइनल मुकाबला है आज।
जी हाँ संदीप, 10 साल आपके नाम, लेकिन ये फाइनल होगा किसके नाम, इसके लिए थोड़ा इंतज़ार करना होगा। और थोड़ी दौर में राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद में आमने सामने होगी मुंबई इंडियंस और राइजिंग पुणे सुपर जॉइंट्स। इससे पहले कि आईपीएल पर हम चर्चा करें, अपने सुनने वालों को बता दें कि आज भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने दमदार खेल दिखाते हुए दक्षिण अफ्रीका में आयोजित 4 देशों की एक दिवसीय सीरीज को थोड़ी ही देर पहले अपने नाम किया है।
दक्षिण अफ्रीका की ही जमीन पर दक्षिण अफ्रीका को हरा दिया है।
जी हाँ, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस। आज पोचेस फर्स्ट रूम में खेले गए फाइनल में भारतीय महिला टीम ने मेजबान दक्षिण अफ्रीकी टीम को बेहद आसानी से 8 विकेट से बात दी। भारतीय टीम के सामने जीत के लिए 157 रनों का लक्ष्य था, जो उसने कप्तान मिताली राज के नाबाद 62 और सलामी बल्लेबाज पूनम राउत के नाबाद 70 रन की मदद से 33 ओवर में ही केवल 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इससे पहले दक्षिण अफ्रीकी महिला टीम ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 40.2 ओवर में ही महज 156 रन बनाए। दक्षिण अफ्रीका की सुने लूज ने सर्वाधिक 55 और बिगनन डू प्रीज ने 30 रन बनाए। भारत की झूलन गोस्वामी ने 22 रन देकर 3, पूनम यादव ने 32 रन देकर 3 और शिखा पांडे ने 23 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। और अब बात आईपीएल 10 के फाइनल की, तो मुंबई इंडियंस ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। मुंबई की टीम में लैंडल सिमंस, पार्थिव पटेल, अंबाती रायडू, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, किरेन पोलार्ड, कृणाल पांड्या, मिचेल जॉनसन, करण शर्मा, जसप्रीत बुमराह और लसित मलिंगा शामिल है। यानी हरभजन सिंह को इस फाइनल मुकाबले में खेलने का मौका नहीं मिला है। और अगर बात की जाए सुपर जॉइंट्स पुणे की, तो सबकी निगाहें रहेंगी धोनी की, क्योंकि वो 7वां फाइनल खेल रहे हैं। और इसके अलावा कप्तान स्टीव स्मिथ पर भी नजर रहेंगी, क्योंकि पिछले मुकाबले में उन्होंने कोई खास बल्लेबाजी नहीं की थी। लेकिन पुणे की बात की जाए तो इनके गेंदबाजों में काफ़ी दम है, और अब ये देखना होगा कि मुंबई की टीम किस तरह की शुरुआत यहाँ पर दे पाती है। नजरें रहेंगी पार्थिव पटेल पर, जिन्होंने बहुत ही बखूबी सलामी बल्लेबाज की भूमिका निभाई है, और पिछले मुकाबले में जिस तरह से कोलकाता नाइट राइडर्स ने बहुत ही दमदार खेल जिनसे उम्मीद की जाती थी कुछ ऐसा नहीं रहा, और मुंबई की टीम ने बहुत आसानी से उसे 6 विकेट से पराजित किया था। तो मुंबई के सामने कोई बहुत बड़ा ऐसा सवाल नहीं है कि उनकी टीम किसी तरह से खतरे में नजर आए।
कागज़ पर और मैदान में खिलाड़ियों के हिसाब से कौन टीम किस पे भारी नज़र आ रही है आपको?
देखिए यहाँ पर अगर आत्मविश्वास की बात की जाए तो, क्योंकि राइजिंग पुणे सुपर जॉइंट से पहला ही क्वालिफायर मुकाबला खेलने के साथ ही फाइनल में पहुँच गई थी, और उसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो मुंबई के मुकाबले थोड़ा बेहतर है। लेकिन जैसा कि आपने मैदान की बात की, तो मैदान में क्या होगा भविष्यवाणी करना खतरे से खाली नहीं है।
बहुत शुक्रिया। खेल समाचारों के साथ ही वक्त हो चला है कार्यक्रम के समापन का, लेकिन पहले मुख्य समाचार एक बार फिर निखिल रंजन से।
बीबीसी समाचार। पहले विदेश दौरे में सऊदी अरब आए अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस्लाम पर अपने भाषण में कूटनीतिक संतुलन रखने के साथ ही सऊदी अरब को एक कड़ी चेतावनी भी देंगे, ऐसी उम्मीद की जा रही है। उत्तर कोरिया की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण करने की बात सामने आई है, और दिल्ली में जंतर मंतर पर आज हजारों की तादाद में भीम सेना के बैनर तले लोग जमा हुए। बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे अजीत सारथी। हमारा अगला प्रसारण नमस्कार भारत भारतीय समय अनुसार सुबह 6:30 बजे। तब तक संदीप सोनी के साथ समस्त सहयोगियों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।